आस्तिक कुर्सी पर टिककर बैठा हुआ था और उसके एक हाथ में पेपर वेट था जिसे वो अपने हाथों से घुमाए जा रहा था। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर उसके महल के हर एक हिस्से की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। आस्तिक के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और उसकी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उसने स्क्रीन को देखते हुए कहा, डियर सासुमा, आपको लगता है कि आप इस खेल में मुझसे आगे निकल जाएंगी, पर आपकी ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। आप इस खेल में अभी अभी आई हैं और मैंने इस खेल की तैयारी बहुत पहले से कर रखी है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन सी चाल कब चलनी है और किस तरीके से चलनी है कि सामने वाले को अपने पासे देखने का भी समय ना मिले। मुझे पता था कि आज की पार्टी में आप पहले आएंगी ही। नहीं, आपको आपकी बेटी की कोई परवाह नहीं है। आप उसे मिलने थोड़ी ना आई हैं और ना ही यहाँ पर पार्टी एंजॉय करनी है। आपके यहाँ आने का क्या मकसद था ये तो मुझे तभी पता चल गया था जब आपकी गाड़ी प्रताप सिंघानिया के पास गई थी। आस्तिक के चेहरे की डेविल स्माइल और गहरी हो जाती है और वो इसी तरीके से पेपर वेट घुमाते हुए कहता है, मेरी रियासत में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसकी भी भनक मुझे रहती है और यहाँ पर तो मेरी अपनी सासुमा किसी से मिलने जा रही थी। आपको क्या लगा, मुझे इस बात की खबर नहीं होगी? चाहता तो इस महल में आने से पहले ही आपका पर्दाफाश कर चुका होता, पर मैं चाहता हूँ कि अरुणिमा आपकी सच्चाई अपनी आंखों से देखे और मुझे देखकर लगता है कि आपके प्यार की परत बहुत गहरी है। सच्चाई दिखाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जब शारदा जी और अरुणिमा आस्तिक के कमरे में बैठकर बातें कर रही थीं, तब आस्तिक उनकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। जब अरुणिमा ने अपनी माँ को आस्तिक का किया हुआ व्यवहार बताया तो आस्तिक की आंखें छोटी हो गईं और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये अपनी माँ से मेरी बुराई कर रही है, ऐसे बता रही है जैसे मैंने इस पर न जाने कितना अत्याचार किया है। फिर आस्तिक दूसरे ही पल सोचने लगा, क्या मैंने सच में इस पर अत्याचार किया है, और अपनी ही बात को नकारते हुए कहा, नहीं तो। आस्तिक ने शारदा जी की बात सुनी कि कैसे वो अरुणिमा को यहीं पर रहने के लिए कह रही थी। आस्तिक के चेहरे की मुस्कान गहरी हो जाती है और वो कहता है, क्या माँ है, मैंने तो सुना है कि माँ अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती है और अपने बच्चों को उस तकलीफ़ से निकालने के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है, पर यहाँ तो मेरी सासू माँ अपनी बेटी के मुँह से उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर भी उसे दुनियादारी का ज्ञान दे रही है। खैर छोड़िए, मुझे आपसे इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। तभी आस्तिक देखता है कि अरुणिमा और शारदा जी महल देखने के लिए जा रहे हैं। आस्तिक के चेहरे की मुस्कान अभी भी बरकरार थी और वो उस फुटेज को देखते हुए कहता है, तो आपने अपना पासा फेंक ही दिया, पर मैंने कहा ना, इस खेल की तैयारी में बहुत पहले से कर रहा हूँ। आस्तिक की सोच के मुताबिक वो लोग उसकी माँ के कमरे के बाहर थे और जैसा कि आस्तिक को पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि शारदा जी उस कमरे में जाने वाली हैं, उससे पहले ही आस्तिक ने अपनी माँ की तस्वीर वहाँ से हटवा ली थी और वहाँ पर अपनी माँ से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। और जब शारदा जी आस्तिक की माँ के कमरे को देख रही थीं और उनके हाथ कुछ नहीं लगा, तो उनके चेहरे की झुंझलाहट और वो गुस्सा देखकर आस्तिक को बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था। आस्तिक की नज़र अभी भी स्क्रीन पर थी जहाँ पर शारदा जी और अरुणिमा गार्डन एरिया में थे। तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है और एक सेवक अंदर आता है। आस्तिक अपनी गहरी निगाहों से उस सेवक को देखता है तो वो सेवक अपना हाथ बांधे हुए नीचे किए हुए कहता है, राजा साहब, गोयनका साहब आए हैं। आस्तिक हामी सिर हिलाता है और कहता है, उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद आस्तिक अपने स्टडी रूम से बाहर आता है और उसकी नज़र हाल में बैठे लोगों पर जाती है। आस्तिक उनकी तरफ मुस्कुराते हुए आता है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते मिस्टर गोयनका। सामने मिस्टर जयंत गोयनका और उनकी पत्नी राधा गोयनका बैठे थे। वे दोनों जब आस्तिक को आता हुआ देखते हैं तो अपनी जगह पर खड़े होते हैं। जयंत गोयनका अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नमस्ते राजा साहब। आस्तिक उनके पास आता है और उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहता है, कितनी बार कहा है आपको कि मुझे राजा साहब मत बुलाइए, मैं उम्र में छोटा हूँ आपसे, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। राधा जी मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखते हैं और कहती हैं, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम इस बात को भी तो नहीं भुला सकते हैं ना कि तुम यहाँ के राजा हो। आस्तिक मुस्कुराते हुए हामी सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, लेकिन राजा मैं बाकी लोगों के लिए हूँ, आपके परिवार वाले हैं और फैमिली से एक दूसरे के साथ फॉर्मल नहीं होती है, प्लीज़ आंटी मुझे आस्तिक कहकर ही बुलाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। राधा जी और जयंत एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए हामी सिर हिलाते हैं। आस्तिक इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहता है, आप लोग अकेले आए हैं, जीवन आपके साथ नहीं आया? राधा जी कहती हैं, अरे वो तो हमारे साथ ही रहा था, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, कहता है कि मैं दूसरी गाड़ी में आ रहा हूँ, शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा, फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी राधा जी महल की तरफ देखते हुए कहती हैं, हमारी होने वाली बहू कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आस्तिक अपने पीछे खड़े सेवक से कहता है, जाओ प्रणाली को बुलाकर लाओ। सेवक वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद प्रणाली वहां आती है। प्रणाली अपने होने वाले सास ससुर को देखकर मुस्कुराते हुए उनके पास आती है और झुककर उनके पैर छूती है। जयंत ने प्रणाली के सिर पर हाथ फेरा और राधा जी ने प्रणाली के माथे को चूमते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही है। प्रणाली के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई थी और उसके चेहरे की रंगत और निखर गई थी। प्रणाली और जीवन की सगाई एक साल पहले ही हो गई थी। गोयन का परिवार कहीं से भी रुतबे में आस्तिक से पीछे नहीं था। जयपुर में उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी और बिजनेस के सिलसिले में अक्सर जयंत गोयन का और आस्तिक का मिलना जुलना होता रहता था। इसी बीच आस्तिक की मुलाकात जयंत गोयनका के बेटे जीवन गोयनका से हुई और आस्तिक को जीवन प्रणाली के लिए बेस्ट ऑप्शन लगा। मौका देखकर आस्तिक ने जीवन और प्रणाली के रिश्ते की बात जयंत गोयनका के सामने रखी। राज परिवार से कौन नहीं रिश्ता जोड़ना चाहता, और जब रिश्ता सामने से आया तो जयंत ने इस रिश्ते के लिए तुरंत ही हामी भर दी थी। दूसरी तरफ अरुणिमा गार्डन एरिया में अपने परिवार के साथ थी। शारदा जी और पृथ्वी एक टेबल पर बैठे थे और अरुणिमा कीर्ति मिश्री और ज्योति के साथ वहां खेल रही थी। अरुणिमा को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि आज रात उसके लिए क्या हो सकता है या फिर आस्तिक आज रात उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसके लिए बस यही पल ही मायने रखते थे जब वो अपने परिवार के साथ थी और खुलकर इस पल को जीना चाहती थी। शारदा जी बस अपनी निगाहों से अरुणिमा को देख रही थी और आस्तिक के बारे में सोच रही थी। तभी उनके फोन पर मैसेज ट्यून बजता है। शारदा जी अपना फोन उठाकर देखती हैं तो सामने से प्रताप का मैसेज था। वो मैसेज खोलकर देखती हैं तो उसमें लिखा था, मुझे कुछ पता चला है राजा साहब की मरी हुई बेटी के बारे में, कल मुझसे आकर मिलो।